ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। ओम शांति। हम सब आत्माएं महान ते महान आत्माएं हैं, क्योंकि हम आत्माओं को परम आत्मा ने स्वयं सिलेक्ट किया है। भगवान त्रिकालदर्शी परमात्मा सर्व आत्माओं के तीनों कालों को जानने वाला उस परमात्मा बाप ने हम आत्माओं के तीनों कालों को जानकर श्रेष्ठ भाग्यवान समझकर अपना बच्चा बना लिया। भगवान का बच्चा भाग्यवान ही बन सकता है। वैसे तो सर्व आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान जब साकार सृष्टि पर आता है, साकार शरीरधारी अपनी बच्चों से मिलता है, तो उस साकार शरीरधारी में जो विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं, उनको भगवान सिलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है। लौकिक दुनिया में तो इलेक्शन के द्वारा चुनाव होता है, लेकिन भगवान इलेक्शन न करा के त्रिकालदर्शी होने के कारण सिलेक्शन करता है, सिलेक्ट करता है। तो हम आप सब आत्माओं को भगवान ने सिलेक्ट कर लिया कि यही मेरे बच्चे विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज्य अधिकारी कल्प पहले बने थे, अब भी बनेंगे, क्योंकि बाप त्रिकालदर्शी है, सब जानता है। अब बाबा तो सिलेक्ट करके सतयुगी दुनिया में आने का अधिकारी बना दिया। हम सब आत्माएं इस समय विश्व के पालक के बच्चे बनकर सतयुगी विश्व के मालिक बन जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन वर्तमान समय आत्माओं में विश्व के मालिक बनने की विशेषताएं कहो, गुण कहो, शक्तियां कहो, वो आत्मा में नहीं है। तो बाबा रोज हम आप सबको पढ़ाई पढ़ाकर पढ़ाई के द्वारा बताता है कि बच्चे इस विधि से ऐसे पुरुषार्थ के द्वारा तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। रोज बाबा मुरली में नई नई विधि बताता है, युक्तियां बताता है। अब जो विधि आपको सहज लगे उस विधि को अपना लो और उस विधि के द्वारा स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बना लो, अर्थात स्वयं को बाप समान बना लो। तो स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए कल बाबा ने परसों जो मुरली चलाई, अव्यक्त मुरली, उसमें 5 बातें बाबा ने बताई है, आप लोगों ने सुनी है। पहली बात बाबा ने कहा, सोमान में रहो और दूसरों को भी सोमान की दृष्टि से देखो, अर्थात सम्मान दो। दूसरी बात बाबा ने बताई कि दिल के स्नेही बनो, दिल का स्नेह संपन्न और संपूर्ण सहज बना देगा। तीसरी बात बाबा ने कहा, मेहनत मुक्त बनो, बाप मेहनत नहीं देखना चाहता है। चौथी बात बाबा ने कहा, सफल करो और सफल कराओ, अर्थात सफलता प्राप्त करो। और पांचवी बात क्या इशारा दिया है, क्या इशारा दिया है? मुरली तो सबने सुनी है ना, क्या विशेष इशारा दिया है? वायदा का फायदा लो। अब इन पांचों बातों को आप मनन करके, इस पर प्रैक्टिस करके इसको स्वरूप में लाओ। पहली बात है, सोमान में रहो और सोमान की दृष्टि से देखो। सो मान का अर्थ ही है सो अर्थात मैं आत्मा, मुझ आत्मा का मान क्या है। बाबा ने शुरू में बताया भी कि बाप आप आत्माओं का कितना सोमान बढ़ा दिया है, कितने महान बन गए हो, जो आप आत्मा जैसी महान इस संसार में कोई है ही नहीं। चाहे 16,000 का लास्ट दाना है, चाहे 9,00,000 का लास्ट दाना है, लेकिन आप जैसे महान इस संसार में कोई नहीं है। प्रैक्टिकल बाप ने इतना महान बना दिया है। फल आपको अपनी महानता की अनुभूति नहीं होती है, साधारण अनुभव करते हो, इसका छोटा सा कारण है। मुरली में तो सुना है कि कितनी बाप ने आपकी महिमा की है, लेकिन उस महिमा के स्वरूप क्यों नहीं बन पाते हो? उसका कारण है स्वमान। जब तक आप अपनी को आत्मक स्थिति में स्थित नहीं करेंगे, तब तक भगवान का दिया हुआ मान आपको प्राप्त नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। देह भान में रहकर भगवान का मान नहीं मिल सकता। भगवान का मान प्राप्त करने के लिए आत्मक स्वरूप में स्थित होकर देखो कि भगवान का सब कुछ दिया हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। बाबा आप आत्मा को देता है, अपनी सारी पढ़ाई रूहानी पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है, पांच तत्वों से पार की पढ़ाई है। तो जब तक पांच तत्वों से पार की स्थिति नहीं रहेगी, तब तक भगवान के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा। और अगर अनुभव नहीं हुआ तो नशा भी नहीं चढ़ेगा, खुमारी नहीं आएगी और दूसरे को स्वमान की दृष्टि से देख ही नहीं सकेंगे। क्योंकि जैसे स्वयं होंगे वैसे दूसरे को देखेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आपको अपने देखने की दृष्टि है, वैसे आपके लिए सारी सृष्टि अनुभव होगी। इसलिए जब स्वयं को अपनी को आत्मक स्थिति में स्थित करो, यह अनुभव हो कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, बालक सो मालिक हूं, आत्मा मालिक है बाप की प्रॉपर्टी की। तो बालक सो मालिक हूं, उस भगवान की प्रॉपर्टी का मालिकपन अनुभव हो, आपकी अपनी अनुभव हो, तब आप दूसरे को उस नजर से देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। एक इस दुनिया की साधारण एग्जाम्पल देखो कि आप अंधेरे में खड़े हैं तो बाहर रोशनी में देख सकते हैं, लेकिन जो रोशनी में खड़ा है उसको अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अर्थ कि जो आत्मा संपूर्णता में है, प्रकाश में है, उसको कभी अवगुण या कमी दिखाई ही नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं दिख सकता है। इसीलिए देखो अपने मीठे बाबा को बच्चों की कमी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि बाप सदा संपूर्ण है, सदा है। अंधेरे से बाहर देख सकते हो, अर्थात कमी वाली आत्मा अपनी कमी को दूर करके संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है, कमी हटा सकती है, पुरुषार्थ कर सकती है। लेकिन जो है संपन्न, उसको कमी दिखाई ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि दूसरे को सोमान की दृष्टि से देखो, वो तब देख सकेंगे जब आप स्वयं सदा सो के मान में स्थित रहेंगे। सो का मान क्या है? सो का मान है परमात्मा, जो हम आत्माओं को जितना श्रेष्ठ समझता है, उस श्रेष्ठ स्थिति में स्वयं को स्थित रखना और समझना, ये सो मान है। दूसरी बात, जो भगवान की महिमा है, वही हम बच्चों का सो मान है। भगवान पतित पावन है तो हम आत्माएं मास्टर पतित पावन हूं। हर चीज में मैं आत्मा मास्टर पतित पावन हूं, या हर बात में मास्टर हूं। चाहे मास्टर शांति का सागर हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो जो भगवान की महिमा, वो हम बच्चों का सोमान है। सोचो कितना श्रेष्ठ सोमान कि इस समय हम आत्माओं का पार्ट भगवान के साथ साथ है। पूरे कलप में देव आत्माओं के साथ पार्ट होगा, महान आत्माओं के साथ होगा, लेकिन परम आत्मा के साथ नहीं होगा। यह संगम युग ही ऐसा युग है जहां मुझ आत्मा का पार्ट परम आत्मा के साथ है। आप अपने इस सोमान को इमर्ज करो। जितना इस सोमान को लाते जाएंगे, स्वयं भरपूर होते जाएंगे, उतना ही सोमान की दृष्टि से देख सकेंगे। अगर सोमान की दृष्टि से नहीं देखते हो तो उसको सम्मान भी नहीं दे सकते। सम्मान का अर्थ ही है रिगार्ड देना, मान देना। क्या रिगार्ड दें, क्या मान दें? जो दूसरों से आप चाहते हो वही उसको दो। सम मान, समान रखो। जो आप दूसरे से चाहना करते हो, लोग मेरे से प्यार से बोले, हमें रिगार्ड दें, मेरा कहना माने, तो जो चाहते हो वही दो। इसको कहा जाता है सम मान, समान रूप से मान देना, जो चाहते हो वही दो। लेकिन कब दे सकेंगे? तब जब स्वयं संतुष्ट होंगे, भरपूर होंगे, तभी दे सकेंगे। अगर खुद की ही मान की इच्छा होगी तो दूसरे को मान दे ही नहीं सकते। सब जगह संकल्प यही आएगा, मेरी महिमा हो, मुझे ही पूछा जाए, मेरा नाम आए। अगर खुद भरपूर नहीं है तो दे नहीं सकते। स्वयं को भरपूर रखने का आधार दो है। एक तो स्वमान में स्थित होकर बाप के प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाओ। अधिकारी, मांगने वाले नहीं। और दूसरा है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, सब इच्छाएं बाप से सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों के आधार से सर्व इच्छाएं पूरी कर लो। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब दूसरों को मान दे पाएंगे, या जो उसकी इच्छा है उसको आप दे सकेंगे। सर्व संबंध से सर्व प्राप्तियां करो। उदाहरण के रूप से मान लो कोई आत्मा आपसे प्यार चाहती है, मेरे से बहुत स्नेह से रहें, प्यार से रहें, प्यार से बोलें, मान लो चाहती है। अब आपको अगर उसे प्यार देना है, स्नेह देना है, तो आत्मा में तो अभी इतना प्यार स्नेह भरा नहीं है, तो आप बाप को मां बाप के रूप से याद करो। मां बाप के रूप से बाप की गोद में बैठ जाओ, मां बाप के प्यार का अनुभव करो, दुलार का अनुभव करो। जितना आत्मा प्यार का अनुभव करेगी, तृप्त होगी, दे देगी, दूसरे को प्यार स्वतः देगी। जो चीज चाहिए बाबा से लो, ले करके दो। चाहे मान चाहिए, चाहे शान चाहिए, चाहे महिमा चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे बुद्धि चाहिए, चाहे शक्ति चाहिए, कोई भी चीज चाहिए बाबा से लो। सब बाबा देने के लिए तैयार है। आत्मा बाप से लेकर संपन्न बन सकती है और बनना ही है। एक उदाहरण आपको देता हूं मान शान का। ये तो हर एक ब्राह्मण आत्मा चाहती है, मान शान हर एक चाहती है। या है कोई ऐसा जिसकी चाहना नहीं है? हर एक चाहता है। ऐसे तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन मान शान की इच्छा है। ये तब अनुभव होता है जब आपके साथ के तीन चार व्यक्ति हों और उनमें से एक को टीचर आगे बढ़ा दे, बाबा से मिला दे एक को, फिर देखो अपने अंदर क्या हालत होती। यही आएगा, हमको भी मिला देती तो अच्छा था, हमको भी दादी से परिचय कराती तो अच्छा था। मान शान की चाहना रखना रांग नहीं है, लेकिन मान शान के भिखारी बनना रांग। चाहना का अर्थ होता है हमें उसके लायक बनना, क्योंकि ये तो संगम युग में समझते हो मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, लायक बनो सब कुछ मिल जाएगा। तो मान शान प्राप्ति के लायक बन जाओ, अपने आप ही मान शान मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न है, लायक है नहीं लेकिन चाहिए तो क्या करें? लायक बनेंगे तब तो ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन अभी लायक है नहीं लेकिन चाहिए तो क्या करें? क्योंकि अगर भरपूर नहीं होंगे तो दूसरे को दे नहीं सकेंगे, खुद की ही चाहना है तो कहां से देंगे। और अगर दूसरे को उस समय आप मान शान नहीं दे सकते हैं तो संस्कारों का टकराव, ईर्ष्या, घृणा, ये सब आने लगेगी, शुरू हो जाता है। आपको अनुभव बताते हैं कि मान शान चाहिए तो क्या करो, बाप से लो, कैसे मिलेगा? जब हम शुरू में मधुबन में आए थे तो हमारे पहले सूरज भाई, आत्म भाई, ये सब आए हुए थे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे। हम भी आए तो इनको देखकर बहुत अच्छा, हम भी इन जैसा पुरुषार्थ करने लगे। तो ये सब पुराने थे, तो इनको क्लास के लिए कहा जाता था, क्लास कराते थे, लोग इनसे मिलते थे, दादियां भी बुलाती थी। तो मेरे मन में आता था कि मैं भी तो योग लगाता हूं, मैं भी तो करता हूं, मुझसे तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, ना कोई मिलता है, ना क्लास के लिए कहा जाता है, ना कुछ। अब सोचो क्या करें, ऐसे में क्या करें? अंदर की चाहना तो बहुत है, अब क्या करें जी? आप सोचो, अच्छा ऐसे समय पर आप क्या करते? कोरबा के राकेश भाई, यवर हल्दी हॉस्पिटल में शीघ्र पहुंचे, अगर बैठे हैं, किसी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, कोरबा के। अच्छा, तो आपको बताते हैं कि ऐसे समय में मान शान कैसे प्राप्त हो। पहले बाबा से मिलना, अव्यक्त बाबा से, बहुत इजी था, जिसको जब चाहे तब बाबा से मिल लो। अब जैसे नहीं था, कोई स्टेज पर ही नहीं आ सकता है, तब तो जिसको जब चाहिए तब जाकर मिलो, क्योंकि बच्चे ही बहुत थोड़े आते थे और बाबा एक दिन छोड़कर एक दिन आता था, हफ्ते में 3 बार आता था और पार्टी 100 आ गई, 50 आ गई, 150 आ गई, इससे ज्यादा नहीं। तो सोचो कितना मिलने का चांस होता था हर एक को। तो ऐसे मन में संकल्प बहुत चल रहे थे तो हम बाबा के पास पहुंच गए और बाबा से कहा, बाबा आप कहते हो मांसान की इच्छा नहीं रखो, लेकिन बाबा ये इच्छा जाती नहीं है, क्या करें? बहुत पुरुषार्थ करता हूं कि ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वो होकर रहेगा, मेरा पार्ट कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कल पहले भी बाबा ने हमें ऊंचा बनाया था, अब भी बनूंगा, ये सारी पॉइंट मन में लाता हूं, लेकिन बाबा इच्छा जाती नहीं है, क्या करूं? तो बाबा मुस्कुराया और बोला, क्या मानसान चाहिए क्या? मैंने कहा हां बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा अच्छा मानसान चाहिए, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मानसान चाहिए तो एक काम करो। मैंने कहा क्या बाबा? बाबा ने कहा आप हर संकल्प बोल और कर्म में आप पहले बाबा को रखो, आप बाबा को आगे रखो, बाप आपको आगे स्वतः कर देगा। करके देखो, बहुत सुंदर विधि है। जो भी संकल्प करो चेक करो ये संकल्प बाबा को पसंद है या बाप समान है। जो बोल बोलो चेक करो बाप समान है, कर्म करो चेक करो बाप समान है। आप बाबा को आगे रखो, बाबा आपको स्वतः ही आगे रख देगा, क्योंकि संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे तो श्रेष्ठ की महिमा तो होनी ही है। ऐसे अगर आप चाहते हो हम किसी का अवगुण ना देखें, चाहते हो फिर भी दिखाई पड़ता है, और अगर अवगुण दिखाई पड़ा तो दूसरे को आप मान दे नहीं सकेंगे, उसका सम्मान कर नहीं सकेंगे, लेकिन उसका अवगुण आपको दिखाई ही न पड़े, प्रैक्टिकल देख रहे हो कि उसने यह गलती की, लेकिन आपको वो गलती महसूस ना हो। हो सकता है ये? हो सकता है वो गलती कर रहा है। बाबा कहता उसको सम्मान की दृष्टि से देखो, महानता की दृष्टि से देखो, और गलती कर रहा है। देख पाओगे महानता की दृष्टि से? हो सकता है ये बात? देखो, उसको महानता की दृष्टि से देखने के लिए 2 बातें अपना कर देखो। एक तो संकल्प अंदर इमर्श करो कि उस आत्मा के अनादि और आदि स्वरूप को सामने लाओ, वर्तमान स्वरूप को नहीं देखो, कि यही आत्मा देवी या देवता बनने वाली है, कल पहले बनी थी अब भी बनेगी। गारंटी है। तो जब देवी देवता थी तब यह अवगुण नहीं था, आदि अनादि स्वरूप उसका सामने लाओ। दूसरी बात, अगर अवगुण दिखाई दिया इससे सिद्ध है आपका तीसरा नेत्र नहीं खुला है, इस आंख से देख रहे। अगर तीसरे नेत्र से देखो तो दिव्य चीज ही दिखाई पड़ेगी, अवगुण में गुण दिखाई पड़ेगा। यह हो सकता है अवगुण में गुण दिखाई पड़े। अगर आप दिव्यता की स्थिति में हैं, तीसरा नेत्र खुला है, तो जरूर अवगुण में गुण दिखाई पड़ेगा। उदाहरण के रूप से पिछले सीजन में जैसे बाप दादा आता है तो डायरेक्शन दिया जाता है क्लास में, आप लोग भी सुने होंगे, ताली नहीं बजाना, जब बाबा कहे तब ताली बजाना, डायरेक्शन मिलता है। बाबा आया हुआ था, मुरली चला रहा था, इतने में कुछ ऐसी पॉइंट आई जो जोर से ताली बजा दी। तो एक बार तो ताली बजी तो ठीक है, बजती है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर ही बीता होगा, दूसरी बार जोर से ताली बजा दी। तो जब जोर से ताली बजी तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। फिर बाबा मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर बीता था, फिर जोर से ताली बजा दी। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, ब्राह्मण आत्माएं शांत स्वरूप हैं, बच्चे ताली बजाकर आवाज नहीं करो। फिर मुरली चलाना शुरू किया, थोड़ी देर में फिर ताली जोर से बजा दी। जब चौथी बार जोर से ताली बजी तो जो खड़े थे यहां वॉलेंटियर, वो देखने लगे कर्ण कौन बजा रहा है। हम भी इधर ही बैठे थे, हमको भी अंदर से थोड़ा गुस्सा आने लगा कि इतना भगवान मना कर रहा है, भगवान सन्मुख मना कर रहा है, फिर क्यों नहीं मानते, क्यों ताली बजाते। अब हमारे सबके अंदर तो दूसरे का तो मैं नहीं समझता हूं क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर तो हलचल आ गई कि भगवान इतना कहता है फिर कहना क्यों नहीं मानते। और इधर फिर बाबा ने जब चौथी बार ताली बजाई, हम सब तो हलचल में आए, भगवान क्या कहता है कि आज बच्चों में इतना उमंग है कि बाप के कहने के बाद भी नहीं मानते, फिर भी ताली बजा देते। देखो बाबा ने उस बात को किस रूप से लिया। सोचो, हम सब अवगुण देख रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, भगवान का कहना नहीं मानने, और भगवान उस अवगुण वाली बात को कितना गुण के रूप से उठाया कि बच्चों में इतना उमंग भरा है कि बाप कहता ताली नहीं बजाओ फिर भी ताली बजा रहे। देखो, दिव्य होने के कारण दिव्यता दिखाई पड़ी, अवगुण में गुण दिखाई पड़ा। तो अगर हम दिव्यता स्वरूप में स्थित हैं तो अवगुण में गुण देख लेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। और जब बाबा ने इस प्रकार से कहा उसके बाद ताली नहीं बजी। तो जो मेन चीज है कि तीसरा नेत्र न खुला होने के कारण अवगुण दिखाई दे जाता है। तीसरा नेत्र खोलने का ब्राह्मण आत्माएं अभी प्रैक्टिस कम करती है। तीसरा नेत्र अर्थात अशरीरी होने का अभ्यास, मैं आत्मा हूं इस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास ब्राह्मण आत्माएं बहुत कम करती। तो देह का भान होने के कारण देह की यक्ती बीटी दिखाई दे जाती है। और देह भान तो है ही रावण की वंशज, देह भान में ही पांचों विकार बुराइयां आ जाती। इसलिए मेन बात है तीसरे नेत्र को खोलो, अर्थात बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करो। उसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत सुंदर विधि है, आप हर समय जैसे इस समय आप बैठे हुए हो या लिख रहे हो, अंदर से संकल्प करो कि मैं आत्मा अगर अभी शरीर से निकल जाऊं तो क्या यह हाथ लिख सकेगा या ये शरीर बैठ सकेगा? अंदर का जवाब होगा नहीं। तो इससे सिद्ध है कि इस हाथ के द्वारा लिखने वाली मैं आत्मा थी, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं। ऐसे आप चल रहे हो, खा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, स्वयं से प्रश्न पूछो, आंसर मिलता जाएगा। बार बार अटेंशन आपका आत्मा के तरफ स्वतः ही जाएगा। सुंदर विधि है। सारा दिन देह भान में रहकर जब जाकर योग में बैठते हैं और सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन सारे दिन जो देह भान में रहे तो शाम को जब योग में बैठते हैं तो सारा दिन देह भान में रहने के कारण फिर आत्मा हूं आत्मा हूं रटते रहते हैं, स्वरूप नहीं बन पाते, फिर योग नहीं लगता है, रटने वाले हो जाते, स्वरूप नहीं। तो एक तो सारा दिन ये प्रैक्टिस अवश्य करो, दूसरा विशेष अभ्यास करो, आज करके देखना कि जब रात को सोने जाओ, आज बाबा ने मुरली में भी कहा है, जब आप रात को सोने जाओ तो ऐसे जाकर सो नहीं जाओ, लेकिन बिस्तर पर बैठ करके थोड़ी देर अशरीरी भाव का अभ्यास करो। किस प्रकार से? जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था कि जैसे एक ड्राइवर होता है, सारा दिन गाड़ी को चलाता है, शाम को गैरेज पर छोड़कर जाकर कमरे में सो जाता है, बिस्तर पर सो जाता है। ऐसे जब आप बिस्तर पर सोने जाओ तो संकल्प करो कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा ने सारा दिन इस गाड़ी को चलाया, आंखों के द्वारा देखा, हाथों के द्वारा कर्म किया। अभी मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को, इस चारपाई रूपी गैरेज पर छोड़कर, मैं आत्मा अपने घर, अपने बाप की गोद में विश्राम कर रही। अपना घर अर्थात निराकारी दुनिया, ज्योति की दुनिया, प्रकाश की दुनिया, जहां ना शरीर है, ना शरीर से संबंधित कोई चीज है, बस आत्मा और आत्माओं का पिता शिव बाबा है। मीठे बाबा, हम आपके पास आ गई, आपकी गोद में विश्राम कर रही। यही तो मुझ आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा यही की रहने वाली हूं। मेरे बाबा, आप ही तो मेरे सर्वस्व हो, सब कुछ मेरे आप हो। बाबा, बस मैं आपकी गोद में सो रही। ऐसे संकल्प करते करते अगर नींद आ जाए तो स्वप्न में साक्षात्कार भी हो सकता है, जो आज बाबा की मुरली में सुना है। और जब आंख खुले, सबसे पहले गुड मॉर्निंग करके जब इस शरीर में प्रवेश करो, इस विधि से जैसे ड्राइवर अपने घर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाता है, वैसे आप बाबा से गुड मॉर्निंग करके इस अपनी सीट पर आकर बैठो। अभी मैं आत्मा अपनी सीट पर बैठकर इस गाड़ी को चला रही, आंखों के द्वारा देख रही हूं। और जिसको भी देखो, ये भी आत्मा अपनी सीट पर बैठी, ये भी आंखों के द्वारा देख रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। यह आप शाम और सुबह इस अभ्यास को जितना आप बढ़ाते जाएंगे, आपका तीसरा नेत्र सहज खुलता जाएगा, आत्मक स्थिति पक्की होती जाएगी। यह अभ्यास अवश्य करो, शाम को भी और सुबह, ठीक है? सोमान में रहो और सोमान की दृष्टि से देखो, सम्मान दो। दूसरी बात एक छोटी सी और बता देते हैं, समय पूरा हुआ है। दिल के स्नेही बनो, और इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि दिल के स्नेही बनो तो संपन्न और संपूर्ण सहज बन जाएंगे। सोचा इस बात को कि बाप के दिल के स्नेही बने और संपन्न संपूर्ण सहज बन जाएंगे, अर्थात सब सब्जेक्ट में संपन्न भी हो जाएंगे, हिसाब किताब भी खत्म हो जाएगा, कर्मातीत भी हो जाएंगे। किस आधार से हो जाएगा? तुरंत है ना, थोड़ी सी सोचने की बात। इसका कारण ये है कि अगर आप बाप के दिल के स्नेही बनो तो जो दिल का स्नेही होगा उस आत्मा को बाप की याद सदा रहेगी, स्वतः रहेगी। तो जब बाप की याद सदा रहेगी तो बाप के संग का रंग, जैसा बाप वैसे आत्मा स्वतः बनती जाएगी। संग का रंग लगता ही लगता है, आप संकल्प करो या न करो, उसके संग में जाओ उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बर्फ के स्थान पर चले जाओ, संकल्प करो न करो ठंड हो ही जाओगे, ठंडी आएगी ही आएगी। गर्मी जगह पर जाओ, गर्मी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे बाप के पास पहुंचो तो बाप के संग का रंग समान बना ही देगा, और जहां बाप के साथ दिल का स्नेह है, एक मुरली में आपने सुना होगा जो पुराने हैं, अगर किसी आत्मा पर बाप राजी हो जाता है तो बाबा के शब्द हैं, उसका धर्मराज काजी भी कुछ नहीं कर सकता है। अब यह सोचो कि अगर बाप राजी हुआ, माना आपका खाता क्लियर हो गया, बाप खत्म कर देगा, तभी तो धर्मराज कुछ नहीं कर सकता है। तीसरी बात है, अगर आप सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, सच्चे दिल का स्नेह है, तो ऐसे स्नेही में भगवान को भी अपना नियम तोड़ना पड़ता है। भगवान स्नेही के बंधन में बांधा हुआ है, स्नेही जो चाहे उससे करा सकता है। बाबा कहता, मैं स्नेह के बंधन में बांधा हुआ, असंभव बात भी संभव हो जाएगी अगर दिल का स्नेह है तो। एक छोटा सा उदाहरण क्लास पूरा करेंगे। हम जब मधुबन में आए तो मेरी ड्यूटी पहले किचन डिपार्टमेंट में थी, भोजन बनाने की। तो एक बार जानकी दादी गुरुवार का दिन था, चक्कर लगाने गई थी किचन में। तो हम सब जलेबी बना रहे थे, हम सूरज भाई, आत्म भाई, मेरे सारे किचन वाले। तो जानकी दादी ने दृष्टि देकर कहा कि तुम सब गोप के गोप हो, तुमको गोपी बनना नहीं आता है। ये शब्द कहकर जानकी दादी तो चली क्लास की तरफ। मेरे अंदर संकल्प आया कि क्या अर्थ क्या है आखिरकार। तो मैं जानकी दादी से जाकर पूछा, हमका दादी इसका अर्थ क्या है कि गोप के गोप हो, तुम सबको गोपी बनना नहीं आता है। तो जानकी दादी ने कहा, तुम सब किचन में हो और ये तुम सबको संकल्प नहीं आता है कि जब बाबा को विदाई देते हैं तो बाबा को जाकर कुछ बनाकर खिलाएं, उनके साथ हंसे बहलें, जैसे गोप गोपियां हंसती थी बहलती थी, तुम सबको संकल्प नहीं आता है। मेरे अंदर का तो पहले से संकल्प चलता था कि अगर मेरी ड्यूटी टोली डिपार्टमेंट में होती तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि जब भी बाबा आता है तो टोली खाता है, खिलाते हैं। भोजन तो पहले बाबा सिर्फ 5 बार खाता था पहले। एक तो फर्स्ट डे, लास्ट डे, शिवरात्रि, 18 जनवरी और एक बीच में होली पर बाबा घी अरे खाता था। तो 5 दिन तो हम बाबा को खिलाते थे, बाकी तो हर बार बाबा टोली खाता था। तो एक दिल का जैसे था कि बाबा अगर मेरे हाथ से खाता रहे तो कितना अच्छा है, जैसे एक दिल की प्यार की बात थी। तो जब जानकी दादी ने कहा तो मैंने कहा, दादी आप कहो तो जरूर हर बार बना के खिलाएं। तो जानकी दादी ने कहा, अच्छा बड़ी दादी से पूछ लो, प्रकाशमणि दादी से। तो मैंने जाकर के दादी को कहा कि जानकी दादी कहती है ऐसे बाबा को खिलाया करो। दादी ने कहा, जरूर खिलाओ। तो फिर तो जितनी बार बाबा आया उतनी बार बाबा को बनाकर खिलाया, तो निश्चित है बाबा रिटर्न में खिलाता ही है। लेकिन कोई चीज जब बहुत हो जाती है तो थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है। तो एक बार क्या हुआ, बाबा को भोग खिलाना था लेकिन हम जा करके सो गए और 2 बजे बाबा 2:30 के लगभग विदाई बाबा को देते थे। 1 बजे आंख खुली उठकर आया लेकिन यह भी भूला हुआ था कि बाबा को भोग खिलाना है। तो जब बाबा के सामने भोग की थाली आई तब तुरंत याद आया तो जलेबी बनानी थी। और ओम शांति भवन जो मधुबन गए हैं देखा होगा, ओम शांति भवन में बाबा आता था, पांडव भवन इतनी दूर दौड़ के आना और सारा प्रबंध करके आटा बनाया हुआ था, सब कुछ था लेकिन बनाना था, ये सब करते करते आधा घंटा लग गया। अंदर ये था कि कहीं बाबा चला न जाए, कहीं बाबा चला न जाए, टाइम काफी लग गया। हम जब तक वहां मतलब भोग ले करके बना करके जब तक दौड़े दौड़े गए, एक तो इतनी चढ़ाई है पांडव भवन से ओम शांति भवन में, पैदल ही दौड़ के गए। तो हम थे और श्रीनिवास भाई था, रवि भाई भी साउंड वाला था। तो हम सब जब तक वहां पहुंचे तो एक तो श्वास ऐसे ऊपर नीचे बहुत तेज हो रही थी, और वहां पहुंचे तो देखा होश उड़ गई, बाबा को विदाई दे दिया था। विदाई मतलब बाबा की आंखें बंद थी, दादी सब नीचे थे, विदाई दे दिया था। तो जैसे हम पहुंचे तो इतने में दादी के मुंह से निकला बाबा। तो जैसे बाबा कहा दादी ने, आंखें खोल दी, बाबा वापस आ गया। तो वैसे आपने देखा होगा कि जब गुलजार दादी आती है, मतलब बाबा चला जाता है, तो एक सेकंड बैठती नहीं, उठ के चल पड़ती है, देखा होगा। बैठकर दृष्टि देने लगा, दृष्टि देते देते बाबा को खिलाया, दादी ने खिलाया। फिर उस समय तो थोड़ा रमणीक मूड था, तो दादी ने कहा बाबा क्या भूख लगी थी जो वापस आ गए? तो बाबा ने कहा, बड़ी रमणीक चिटचैट थी, बाबा ने कहा ये है स्नेह का रिस्पांस। तो देखो ये असंभव बात है कि जो डेट फिक्स है जाने के बाद उसी डेट में आएगा, लेकिन नहीं, दिल का प्यार था तो आ गया। कहने का भाव कि बाप के साथ दिल का स्नेह है तो दिल का स्नेह असंभव को भी संभव बना देता है, अर्थात आत्मा सहज ही संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। क्या प्रोग्राम है आगे? योग। कोई आएंगी बहनें? चलो योग छठी, 10 मिनट दिल के स्नेह वाला योग, ठीक है? स्नेह अर्थात लव में ली, मेरा एक बाबा।
जिगर में तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो,